ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल चीन के बीच किसी भी प्रकार की कोई सीमा समस्या नहीं है, नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने किया स्पष्ट। नेपाल में आज 1893 लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त, जबकि आज 1172 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण स्थगित विभिन्न तहों की परीक्षा छठ के बाद संचालन करने की त्रिवन विश्वविद्यालय ने की तैयारी। पश्चिम न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से देश के अधिकांश जगहों में बारिश शनिवार तक जारी रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। और विश्वभर 2,34,76,000 से अधिक लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित जिलों सिंधुपालचौक और बागलूंग को आपदा संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर पुनर्निर्माण के बाकी बचे कामों को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की आश्विन 1 और 6 गते हुई बैठक द्वारा किए गए निर्णयों को साझा करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने बताया कि इस काम के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए करीब 6 अरब रूपये का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हैजा के कारण प्रभावित हाइटी में राहत स्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा खोली गई बहुपक्षीय कोष में नेपाल की तरफ से $5 की सहयोग राशि प्रदान करने का निर्णय बैठक ने किया है। मंत्री ग्यावाली ने बताया कि निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियन का चुनाव आगामी मार्गशीर्ष 27 गते करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को देने का निर्णय किया है। साथ ही नेपाल सरकार और इसराइल सरकार के बीच श्रम समझौता करने का इसराइल के लिए नेपाली राजदूत को जिम्मेदारी देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी भी सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली ने दी। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने स्पष्ट किया कि हुमला की लिमी घाटी में चीन के द्वारा नेपाली भूभाग में भवन निर्माण के समाचार में कोई सत्यता नहीं है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को साझा करने के लिए बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता समेत रहे मंत्री ग्यावाली ने बताया कि 2073 साल में भी इसी तरह की अफवाहें सामने आई थी, लेकिन स्थलगत अध्ययन के दौरान उक्त भूमि नेपाल चीन की सीमा से 1 किलोमीटर दूर चीन की ही तरफ पाया गया था। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल और चीन के बीच किसी भी प्रकार की सीमा समस्या नहीं है, और यदि इस प्रकार की कोई समस्या दिखती भी है तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय विचार विमर्श के जरिए समाधान किया जाएगा। साथ ही मंत्री ग्यावाली ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सभी लोगों से आवश्यक सजगता अपनाने का आग्रह भी किया। नेपाल में आज 1893 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने कहा कि अब तक कुल 49,954 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 71 जिलों को मिलाकर कुल 17,414 लोग सक्रिय संक्रमित हैं। सक्रिय संक्रमितों में से 9,186 लोग होम आइसोलेशन में हैं, वहीं 8,228 लोग संस्थागत आइसोलेशन में हैं। ये जानकारी प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ गौतम ने दी। इसी तरह 220 कोरोना के गंभीर संक्रमितों का आईसीयू और 43 लोगों का वेंटिलेटर में इलाज चल रहा है, ये जानकारी मंत्रालय ने दी। इसी बीच आज 1172 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 67,804 पहुंची है। आज काठमांडू में 492, भक्तपुर में 95 और ललितपुर में 50 कर काठमांडू घाटी में कुल 637 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह आज 7 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से होने के बाद नेपाल में वायरस के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 436 पहुंची है, ये जानकारी मंत्रालय ने दी। इसी बीच नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव डॉ प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए लोगों में लंबे समय तक स्वास्थ्य में कई तरह की समस्याएं नजर आती है। त्रिवन विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के कारण अवरुद्ध परीक्षाएं संचालन करने की तैयारी की है। त्रिवी कार्यकारी परिषद, परीक्षा सुधार तथा समन्वयन परिषद और केंद्रीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक ने अवरुद्ध परीक्षाएं छठ के बाद संचालन करने की तैयारी करने के विषय में संबंधित कार्यालयों को निर्देश करने का निर्णय किया है, ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक पुष्पराज जोशी ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम को राष्ट्रीय सभा सदस्य के तौर पर काम न करने और न करवाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डॉ आनंद मोहन भट्टराय की एकल इजलास ने नीता गौतम को राष्ट्रीय सभा सदस्य के तौर पर काम न करने और न करवाने के लिए आदेश जारी किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ के थाहैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरु सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *1415 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *1415 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश अगले शनिवार तक जारी रहने के बाद जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताई है। देशभर सामान्य से पूर्ण बदली होने के साथ साथ बहुत सारे स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कपिलवस्तु के कोयली नदी की बाढ़ में जीप बहने से एक व्यक्ति की मौत होने के साथ ही अन्य दो लोग लापता हुए हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तौली हवा वितरण केंद्र की जीप कोयली नदी में बहने से ड्राइवर 35 वर्षीय माधव प्रसाद पांडे की मौत होने की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाढ़ में बहने से विद्युत वितरण केंद्र 4 नंबर के प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल और केशव भाट क्षत्री लापता हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जीप में सवार 6 लोगों में से 3 लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हेटौरा भीमफेदी काठमांडू सड़क खंड अंतर्गत देवराली कुलेखानी सड़क के बताशे में आई भूस्खलन में दबने से बारा की प्रशौनी गांवपालिका 4 के 40 वर्षीय यूनिस आलम की मौत हो गई। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर ने दी। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत 4 किलो में भूस्खलन आने से सड़क अवरुद्ध बना हुआ है। चितवन की इच्छा कामना गांवपालिका वार्ड नंबर 6 4 किलो में आज दोपहर भूस्खलन आने से सड़क अवरुद्ध बना हुआ है। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख दयाकृष्ण भट्ट के अनुसार भूस्खलन लगातार होने से सड़क का काम करने में समस्याएं आ रही है। कल से हो रही भारी बारिश के कारण पर्वत के कई जगहों में भूस्खलन आने से वहां की बस्ती जोखिम में है। जिला की जलजला गांवपालिका 8 फरसे में भूस्खलन से एक घर दब गया जबकि 25 घर परिवार विस्थापित हुए हैं। वड़ा अध्यक्ष शहरी विकास डीसी के अनुसार बस्ती के 500 मीटर ऊपर के लक्ष्मी नारायण सामुदायिक वन क्षेत्र से आए भूस्खलन से मानवीय बस्ती पर असर पहुंचा है। विश्व कीर्तिमान पर्वतारोही आंग्रिता शेरपा का राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। हिम चिटवा उपनाम से प्रसिद्ध शेरपा का काठमांडू के टेकू दोभान में बौद्ध परंपरा अनुसार आज अंतिम संस्कार किया गया। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराय ने दिवंगत शेरपा के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय झंडा उड़ाकर सम्मान किया था। कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने पर्वत आरोही आंग्रिता शेरपा का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर विकलांगों को शुभकामना दी। आज राष्ट्रपति भंडारी ने ट्वीट कर सांकेतिक भाषा का प्रवर्धन करते हुए विकलांगों को आगे बढ़ाने के लिए पहलकदमी करने का संबंधित सभी से आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,18,80,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,34,76,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 9,77,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल और चीन के बीच किसी भी प्रकार की कोई सीमा समस्या नहीं है, नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने किया स्पष्ट। नेपाल में आज 1893 लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त, जबकि आज 1172 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। कोरोना वायरस के कारण स्थगित विभिन्न तहों की परीक्षा छठ के बाद संचालन करने की त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने की तैयारी। पश्चिम न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से देश के अधिकांश जगहों में बारिश शनिवार तक जारी रहने की जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। और विश्वभर 2,34,76,000 से अधिक लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।